Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya
Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol,
Nitai Gora Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakacharya Ashtotara Sata His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Tiruvananthapuram Dham Ki Jai Shri Ananta Padmanabh Swami Ki Jai Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय
हरे कृष्ण यहाँ पे ऐसे कोई भक्त है जो हिंदी नहीं समझते हैं और अंग्रेजी समझते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में अनुवाद करने का हम यहाँ पे एक सुविधा बनाई है इट इज दिस अनाउंसमेंट इज फॉर दोज डिवोटीज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी But they prefer to hear the class in English. So we have made arrangement for translation of this class into English. Keshav Kishore Prabhu is there. Can you please stand up? Keshav Kishore Prabhu? Yeah, he is there near the corner, last door, towards my left side in the corner. So those devotees don't understand Hindi, but they prefer English. So they can go and meet Keshav Kishore Prabhu in the left corner, left side of my hand. So there, केशव किशोर प्रभु ट्रांसलेट दिस क्लास लाइव इनटू इंग्लिश वैसे ही कुछ भक्त है जो केवल तेलुगु भाषा को जानते हैं तो वहाँ पे अरुणोदय कीर्तन प्रभु वहाँ पे हैं अरुणोदय कीर्तन प्रभु या यस इज देयर सो आप वहाँ पे जाके उनसे मिलिए तो वो आपको इस प्रवचन का तेलुगु भाषा में अनुवाद करेंगे जो भक्त इस तरफ बैठे हैं हॉल के वहाँ पे आपको अगर आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है तो महाराज जी के इस प्रवचन को फेसबुक महाराज जी के जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर उसका लाइव ट्रांसमिशन हो रहा है तो आप उसके द्वारा भी उसे सुन सकते हैं सबसे निवेदन है कृपया आप अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करें या वाइब्रेट मोड पर रख दीजिए अब जल्दी चेक कीजिए कि वे वाइब्रेट मोड पर हैं या नहीं हरे कृष्ण और एक महत्वपूर्ण सूचना कल हम आपको बताना भूल गए थे कि अन्य स्थानों से जो भक्त आए हैं उनका नाम लेना हम भूल गए थे जैसे कि अहमदाबाद आगरा तथा गोवा और अन्य स्थानों से भी भक्त हो सकते हैं जिनका नाम हमें अभी पता नहीं है उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं
मलयालम ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नो मलयालम Any local devotees here? From Trivandrum, any local devotees are here? They'll understand Hindi? Okay. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuron Militam Yena तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चपञ्चात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी देवृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल शाम को हम श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर और तिरुवनंतपुरम धाम की चर्चा कर रहे थे। जैसे कि अक्सर होता है, सदैव होता है, जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं, जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, वहाँ पे अवश्य भगवान के भक्त भी होते हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है पीछे कई भक्त हैं जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा है क्या? यदि कोई स्थान नहीं मिल रहा है तो थोड़े भक्त यहाँ भी आ सकते हैं ताकि पीछे जगह हो जाए। कोई भक्त हैं क्या जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं? यहाँ से कोई रास्ता है तो यहाँ से अंदर आके यहाँ कोई बैठ सकते हैं पीछे से ऐसे आके? कोई भक्त कोई जिम्मेदारी लेके उनको बुलाए यहाँ पे? सब जो पीछे खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं थोड़े,
वहाँ पे कुछ चेयर्स खाली हैं, कृपया चेयर्स कोई खाली ना रखें। आप अगर खाली चेयर्स है तो आप आगे आइए ताकि देर से आने वाले भक्त पीछे बैठ सकते हैं।
प्रवचन के बाद और प्रसाद के पहले श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा भी हम करेंगे, ठीक है? तो हम कह रहे थे कि जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ पे उनके भक्त भी अवश्य उपस्थित होते हैं। जहां भगवान की लीलाएं होती हैं वहां उनके भक्तों की लीलाएं भी होती हैं। इसके लिए सबसे सरल कारण ये है कि भगवान की लीलाओं में भक्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के बिना भगवान किस प्रकार की लीलाएं करेंगे? भगवान की लीलाएं भी निरस हो जाती हैं यदि भक्त न हो तो। वैसे तो भगवान के संबंध में कोई भी चीज़ निरस नहीं हो सकती, भगवान तो अखिल रसात्म है, रसात्म मूर्ति हैं, मूर्तिमान रस है वो। फिर भी वो अपने आप को विस्तार करते हैं ताकि अपने प्रिय अंशों के साथ में वो प्रेम का आदान प्रदान करें। इसलिए भक्तों के बारे में चर्चा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भगवान के बारे में, बल्कि दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। भगवान और उनके भक्त एक जोड़ी है। तो इसलिए यहाँ इस मंदिर से संबंधित जो कोई महत्वपूर्ण भक्त हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे प्रसिद्ध भक्त जिनका संबंध इस मंदिर से हुआ है इतिहास में, और उनका नाम आप जानते हैं, क्या नाम है उनका? महाराज कुलशेखर। तो थोड़े दिन पहले थोड़े भक्त हैं उनके पुत्र का जन्म हुआ, नामकरण आज या कल होना है। हमने कहा कि यह महाराज कुलशेखर की चर्चा हो रही है और जन्माक्षर क आ रहा है तो कुलशेखर लगा दीजिए। तो यहाँ इतने सारे भक्त आपके पुत्र के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो भी एक राज ऋषि बन जाए। बहुत समाज में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करे। तो महाराज कुलशेखर के बारे में हम सब ने सुना है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज कुलशेखर की रचना, प्रसिद्ध रचना मुकुंद माला स्तोत्र से अक्सर श्लोक गीत रूप में या भजन रूप में गाया करते थे। तो मुकुंदमाला स्तोत्र में 53 श्लोक हैं, परंतु आज शाम को हम केवल 10 श्लोक चुनेंगे और इनका पठन हम करेंगे। महाराज कुलशेखर यहाँ कई वर्ष पूर्व रहे इसी स्थान में, जिसे हम आज केरल कहते हैं, परंतु उस समय ये एक ही स्थान हुआ करता था। केरल और जो आज तमिलनाडु के नाम से स्थान जाना जाता है, इन सारे स्थानों में तमिल भाषा हुआ करती थी। तो केरल, तमिलनाडु, ये सारे स्थान को तमिलकम कहते थे, तमिल भाषी इलाके थे ये। बल्कि मलयालम भाषा भी तमिल से ही आई है। हम एक वैद्य से बात कर रहे थे केरल में ही थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने बताया मुझे कि तमिल और संस्कृत का संगम है मलयालम। तो इस तरह से पहले यहाँ तमिल भाषा हुआ करती थी। मलयालम भाषा राजा कुलशेखर के बाद में प्रारंभ हुई। तो ऐसे बताया जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 9वें शताब्दी में राजा कुलशेखर यहाँ पर रहे इसी स्थान में, बल्कि यहाँ के वो राजा थे। उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र की रचना संस्कृत में अवश्य की, परंतु अन्य संस्कृत रचनाएं भी उन्होंने की हैं। एक नाटिका है जैसे तपति संवरणम, एक नाट्य लीला है, यहाँ केरल में कुटियाट्टम नाट्य लीला होती है, जैसे भरतनाट्यम है और ये सब नृत्य हैं, तो ऐसे नाटक भी होते हैं अलग अलग तरह के। तो दक्षिण भारत में हम देखेंगे कि संस्कृति यहाँ पे बहुत गहरी है, बहुत मधुर है। सुभद्रा धनंजय ये भी एक ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत में महाराज कुलशेखर ने की। साथ साथ क्योंकि वो तमिल भाषी थे, उन्होंने तमिल में भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया है। महाराज कुलशेखर ने 105 ऐसे पासुरम या श्लोकों की रचना की, जिनको कि आगे चल के पेरुमाल तिरुमोली कहते हैं। मेरे उच्चारण में कोई गड़बड़ हो तो तमिल भाषी मलयालम भाषी भक्त क्षमा करें, पेरुमाल तिरुमोली। तो महाराज कुलशेखर 12 आलवारों में से एक थे, जैसे कि संक्षेप में कल हम चर्चा कर रहे थे कि इस तमिल कम में, इस तमिल भाषी प्रांत में अनेक बड़े बड़े भक्त हुए, जिनके बारे में भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में भी की गई है कि द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में ऐसे अनेक बड़े बड़े भक्त होंगे जो कि ऐसे पवित्र नदियों का जल का पान करेंगे, जैसे कि कावेरी नदी, पयस्विनी नदी, ताम्रपर्णी नदी इत्यादि। तो ऐसे आचार्यों ने टीका की है कि ये उल्लेख हो रहा है आलवारों का। तो आलवार कलयुग के प्रारंभ से रहे और महाराज कुलशेखर के थोड़े बाद तक रहे, तो लगभग 4000 वर्षों की अवधि में ये आलवार रहे। वैसे महाराज कुलशेखर का संबंध श्री संप्रदाय से है। श्री संप्रदाय के भक्त के जो संप्रदाय आचार्य हैं वो है श्रील रामानुजाचार्य। श्रील रामानुजाचार्य लगभग यहाँ 1000 वर्ष पूर्व रहे तमिलनाडु में, और रामानुजाचार्य के बारे में हम सब ने सुना है। हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री वैष्णव संप्रदाय से बहुत सी चीज़ें हमारे आचार्यों ने ली हैं, जैसे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने यमुनाचार्य के स्तोत्र रत्नावली आदि से अनेक चीज़ें ली हैं, उनकी प्रशंसा की है। श्री संप्रदाय में शुद्ध भक्ति के ऊपर बहुत जोर है और वैष्णव सेवा के ऊपर, ये दो चीज़ें। ऐसे बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने गौड़ीय संप्रदाय में चारों वैष्णव संप्रदायों में से दो दो बातें ली, तो श्री संप्रदाय में से तो दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनको महाप्रभु ने लिए। एक है शुद्ध भक्ति, जिसमें न कोई कर्म का मिश्रण हो, न कोई ज्ञान का मिश्रण हो, केवल और केवल प्रेम, शुद्ध भक्ति। और दूसरी बात है वैष्णव सेवा। आगे चल के जब हम महाराज कुलशेखर की लीलाओं की का वर्णन करेंगे, हमें ये पता चलेगा कि श्री वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव सेवा के ऊपर कितना जोर दिया जाता है, बहुत अधिक जोर। क्योंकि वैष्णवों की सेवा किए बिना हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। गौड़ीय संप्रदाय में भी यही सिद्धांत है। नरोत्तम दास ठाकुर ने, हमारे सारे आचार्य ने ये बात कही है, भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो श्रील रामानुजाचार्य यद्यपि संप्रदाय आचार्य हैं, पर उनके पहले भी अनेक आचार्य रह चुके हैं, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी। तो इस संप्रदाय को प्रारंभ किया श्रीमती लक्ष्मी देवी ने। उनके संप्रदाय में आचार्य जैसे जैसे हुए तो नाथ मुनि और उनके बाद फिर यमुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य ये सब आए। तो नाथ मुनि के पहले भी ऐसा नहीं है कि आचार्य नहीं थे, इनके पहले भी ये आलवार थे, परंतु ये आलवार जो है असामान्य त्यागी थे, असामान्य आचार्य थे। वो ज़्यादा जाके प्रचार करने वालों में से नहीं थे, जैसे रामानुजाचार्य आदि जाके प्रवचन करते थे, कथा करते थे, मंदिरों की स्थापना उन्होंने की, मंदिरों में जो अर्चना विधि है उसके नियम कैसे होने चाहिए इन सब की स्थापना की। परंतु ये जो आलवार थे वो तो केवल अपनी सेवा में, अपने भजन कीर्तन में मग्न रहते थे, मस्त रहते थे। इसलिए आलवार शब्द का तात्पर्य है जो पूरी तरह से डूबे हुए रहते हैं भगवान की भक्ति में। तो ये जो आलवार हैं 12 हैं, परंतु इनमें से थोड़े ब्राह्मण जाति के थे, वर्ण के थे, थोड़े तथा कथित निम्न श्रेणी के जातियों के थे, और कुलशेखर एक राजा थे, क्षत्रिय थे, एक महिला भी थी अंडाल। तो इस तरह से ये जो 12 आलवार थे इन्होंने तमिल भाषा में अपने भक्ति को प्रकट किया, और तमिल भाषा में होने के बाद भी संस्कृत शास्त्र, संस्कृत में रचना की गई जो शास्त्र हमारे वेद हैं उनको नहीं त्यागा, बल्कि उन्होंने जो तमिल भाषा में ग्रंथ लिखे या जो रचनाएं उन्होंने की उनका गहरा संबंध संस्कृत भाषा के वेदों में है। आजकल तमिलनाडु में दुर्भाग्यवश राजनीति इस प्रकार से चल रही है कि तमिल और संस्कृत में भेद करने का प्रयास चल रहा है, परंतु ऐसा भेद नहीं हो सकता। तमिल और संस्कृत भाषाओं में और तमिल और संस्कृत की संस्कृति में बहुत गहरा और प्राचीन काल से संबंध है। तो ये आलवार उनके लिए सबसे प्रमुख या सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो अवश्य उन्होंने अपने अपने पंक्तियों की रचना की, तो इन सारे पंक्तियों को ढूंढ निकाला नाथ मुनि ने। नाथ मुनि ने फिर इन सारे पंक्तियों को एकत्र किया, इनको दिव्य प्रबंधम कहते हैं। तो हर एक आलवार ने अपने अपने पासुरमों की रचना की, श्लोकों की रचना की, परंतु वो अलग अलग समय पर रहे, 4000 वर्षों की अवधि थी। तो नाथ मुनि ने फिर जाके यहाँ वहाँ से ढूंढ निकाले, तब तक वो प्राय लुप्त हो चुके थे। तो नाथ मुनि ने फिर इनकी उनको मिलाया और दिव्य प्रबंधम के रूप में पुनः वैष्णव समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो दिव्य प्रबंधम को उभय वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि श्री संप्रदाय में इनको भी, दिव्य प्रबंधम को भी वेद के बराबर ही मानते हैं। श्रील प्रभुपाद भी वही समझाते हैं कि वेद केवल संस्कृत की बात नहीं है। यदि कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ किसी भी भाषा में भले क्यों न हो, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं यदि वो वेदों से मिलते जुलते हैं, वेदों के अंतिम निष्कर्षों से वो मिलते जुलते हैं, तो वो भी वेद शास्त्र के से कोई कम नहीं है, वेदों के बराबर ही है। जैसे कि बंगाल में आम व्यक्ति की समझ के लिए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और अन्य आचार्यों ने साधारण बंगला भाषा में अपनी कविताएं लिखीं, अपने भजन लिखे और गाए, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की ताकि सामान्य व्यक्ति भी इन सिद्धांतों को समझ पाए। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कि इन बंगला भाषी ग्रंथों को भी वेदों से कम नहीं समझना चाहिए हमें, क्योंकि उनमें वही सिद्धांत हैं, वही निष्कर्ष हैं जो कि मूलतः श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक ग्रंथों में हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आलवारों ने तमिल भाषा में अपनी रचनाएं की, उनको भी हमें वेदों से कम नहीं मानना चाहिए। तो आलवार संस्कृत भाषी वेदों को अवश्य मानते थे, परंतु उनकी भाषा थी तमिल, इसलिए उन्होंने तमिल में रचनाएं की। तो ये दोनों उभय वेदांत कहते हैं, उभय अर्थात दोनों, दोनों संस्कृत वेदों को भी मानते थे और तमिल भाषा में जितने ये ग्रंथ हैं उनको भी मानते थे। तो खैर, ऐसे उभय वेदांत या दिव्य प्रबंधम इनकी रचना हुई और महाराज कुलशेखर ऐसे संप्रदाय में आए। कुलशेखर महाराज, जैसे मैंने कल कहा, लगभग 9वीं शताब्दी में थे, लगभग सन 800 से 820 या 825 इस दौरान उनका राज्य यहाँ पर इसी स्थान में हुआ, यही उनकी राजधानी थी। और लगभग उनके 300 वर्ष बाद में श्रील रामानुजाचार्य आए। तो महाराज कुलशेखर चेर राजवंश से थे। अब इसके पहले कि हम महाराज कुलशेखर के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करें और इनकी लीलाओं का वर्णन करें, ये उचित रहेगा कि संक्षेप में हम कुछ तमिलकम भूमि के इतिहास के बारे में कुछ जानें। ये एक आवश्यक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड होगा हमारे लिए, जिससे हम समझ पाएंगे कि महाराज कुलशेखर यहाँ रहते थे, किस वातावरण में रहते थे। द्रविड़ देश अर्थात दक्षिण भारत में कई प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण राजवंश हुए, रॉयल डायनेस्टीज। इनमें से तीन प्रमुख थे, एक हैं पांड्य, दूसरे हैं चोल और तीसरे चेर। और भी हैं, जैसे कि पल्लव वंश है, आय वंश है इत्यादि। वैसे जब हम हमारे पाठशालाओं में इतिहास आदि पढ़ते हैं तो अधिक इन राजवंशों के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, भक्तों को जानकारी नहीं होती है इन वंशों के बारे में। तो आपको पता होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे अनेक देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और लेओस, कैम्बोडिया, फिलीपींस तक जो बहुत पूर्व है, पूर्व दिशा में है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता स्थापित की गई थी लगभग 1000 या 1500 साल पहले। संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कहाँ है आप जानते हैं? अंकोर वाट। हालांकि अब वो वहाँ पे कोई भगवान विष्णु का विग्रह नहीं है, वो मंदिर खाली है अभी, लगभग 500 एकड़ के परिसर में है, 500 एकड़ के परिसर में है। और ये भी लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 या 12000 13000 वर्ष पूर्व इसकी मंदिर की स्थापना की गई थी कंबोडिया देश में। इसको अंकोर वाट कहते हैं वहाँ की भाषा में, विष्णु का धाम, तो विष्णु लोक। तो ये अंकोर वाट इतना बड़ा मंदिर, इसकी स्थापना 1200-1300 वर्ष पहले सूर्यवर्मन राजा ने की थी, जो कि पल्लव वंश से थे। तो दूसरे शब्दों में यहाँ के जो राजा थे बहुत धार्मिक राजा थे। हाँ, थोड़े ऐसे राजा भी हुए होंगे जो दुष्ट थे, जैसे एक राजा थे जिन्होंने रामानुजाचार्य को बहुत परेशान किया, कोलतुंग राजा थे, ऐसे कई दुष्ट राजा भी थे, परंतु बहुत सारे राज ऋषि भी थे जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए बहुत प्रयास किया, न केवल द्रविड़ देश में परंतु समुद्र पार करके वो अलग अलग देशों में गए, दक्षिण पूर्व एशिया में उनकी नौसेना आदि भी हुआ करती थी, और व्यापार के लिए भी व्यापारी लोग नौके में बैठकर दूर दूर तक जाया करते थे। तो ऐसे ये महत्वपूर्ण वंश राजवंश थे। तो इनमें से तीन सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजवंश थे ये तीन, जिनके नाम हमने बताए। एक पंड्य राजवंश, जो जिनकी राजधानी थी मदुरई। आप में से कई भक्त अभी मदुरई होकर आए, मदुरई से भक्त भी यहाँ पर है हमारे वणकम। तो मदुरई उनकी राजधानी हुआ करती थी, मदुरई, तिरुनेलवेली इत्यादि, और ये चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। तो पंड्य राज्य के उत्तर भाग में चोल राजवंश के राजा रहा करते थे। उनकी राजधानी थी उरैयूर, और बाद में चल के कांचीपुरम ये उनकी राजधानी हुई, जो पूर्व तट है, समुद्र तट है भारत का, उसको चोलमंडलम कहते हैं। बाद में अंग्रेजों ने आके उसको कोरोमंडल कह दिया, कोरोमंडल कोस्ट। तो आपने भूगोल आदि में पढ़ा होगा कोरोमंडल, परंतु चोलमंडलम है, चोलों का मंडल, चोलमंडलम। तो उनकी राजधानी मदुरई में हुआ कर उनकी राजधानी उरैयूर में ये सूर्यवंशी राजा थे। और फिर चेरवंशी, ये चेरवंश के राजा इस प्रांत में रहा करते थे, केरल प्रांत में। और यहाँ इनकी राजधानी अनेक स्थानों में थी, पहले कोल्लम नाम के स्थान में, आज भी है कोल्लम, और बाद में चल के ट्रावणकोर, तिरुवितमकूर इज द मलयालम नेम, त्रिवितमकूर। तो ये आज इसको ट्रावणकोर कहते हैं, अंग्रेजों ने थोड़ा नाम बदल दिया। तो ये चेरवंशी राजा, इनकी राजधानी बदलती थी ना, जितने भी राजवंश थे कभी कभी, जैसे जैसे सदियां बीतती गई राजवंश बीतते गए। तो यहाँ पे भी पहले तमिल भाषा चलती थी, और ये चेरवंश के राजा यहाँ से राज्य करते थे। तो महाराज कुलशेखर का जन्म इस राजवंश में हुआ, और महाराज कुलशेखर के बाद यहाँ पे मलयालम भाषा धीरे धीरे आने लगी, और केरल प्रांत की पहचान थोड़ी अलग होने लगी तमिल प्रांत से। उसके बाद धीरे धीरे ये केरल हो गया, एम आई करेक्ट? तो ये एक संक्षिप्त इतिहास है। तो अभी राजा कुलशेखर इसी स्थान में रहे, और उनके पिता यहाँ के राजा थे, उनका नाम था राजा दृढ़व्रत। देखिए सारे नाम भी संस्कृत के। तमिलनाडु में भी जितने नाम है अनेक संस्कृत भाषी नाम ही होते हैं। तो इनका नाम था कुलशेखर, महाराज के पिता का नाम था राजा दृढ़व्रत। तो महाराज दृढ़व्रत के जीवन में एक दुख की बात थी कि उनका कोई संतान नहीं था। वो प्रतिदिन यहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि अच्छा अंदर आ सकते हैं आप, बहुत सारे भक्त इकट्ठे हैं, बाहर कोई बैठे हो तो आप आ सकते हैं अंदर, को बुला के ला सकते हैं आप। भक्त आ सकते हैं, वो बाहर बेचारे धूप में बैठे हैं, यहाँ अंदर आ सकते हैं। यहाँ बैठ सकते हैं उसके स्टेज के ऊपर. तो अनंत पद्मनाभ स्वामी ने उनकी इच्छा पूरी की और महाराज कुलशेखर का जन्म हुआ. नाम उनको ऐसे दिया गया था, कुलशेखर. ऐसे बताया जाता है कि राजा कुलशेखर ये कौस्तुभ मणि के अवतार है. कौस्तुभ मणि जानते हैं, भगवान पहनते हैं इस मणि को अपने वक्षस्थल पर. तो राजा कुलशेखर, बल्कि अनेक जो आलवार हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कोई न कोई आयुध आदि हैं. तो जैसे कि राज वंश के राजकुमारों के साथ होता था, उनको प्रशिक्षण कम आयु से ही दी जाती थी. जो सैन्य कलाओं में, कौशल्य में, तो कैसे तलवार आदि से युद्ध करना, घोड़े पे सवार होकर कैसे चलना इत्यादि, सो इन सारे चीज़ों में राजा कुलशेखर बहुत ही प्रवीण हो गए. तीर चलाना, हाथी को चलाना, घोड़े को चलाना इत्यादि. और थोड़े समय में ही वो बहुत ही शक्तिशाली और शूरवीर योद्धा हो गए. और जब पिता ने देखा कि अब मेरा पुत्र राजकुमार अब योग्य हो गया है राज सिंहासन पर बैठने के लिए, तो राजा दृढ़व्रत ने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया और वो वन में चले गए और राजा कुलशेखर को राजगद्दी पर बिठा दिया. तो राजा कुलशेखर जो है, उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी. इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि ये प्राय राम राज्य के समान हुआ करता था. सारी प्रजा सुखी थी, न्याय आदि सब ठीक ठाक चलता था, यहाँ समृद्ध थे सभी लोग. तो ऐसे समय बीतता गया. प्रतिदिन, जैसे कि राजाओं के समाज में प्रथा थी, यहाँ पे महाराज कुलशेखर अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे और वहाँ जाके प्रणाम करके अपने राज्य के प्रशासन के संबंध में कुछ न कुछ बताते थे कि कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, रिपोर्ट दिया करते थे. तो अक्सर हम कहते हैं कि हमारे संस्था में भी ऐसे होना आवश्यक है, करना चाहिए. हर एक मंदिर में जो मंदिर को संभालने वाले भक्त हैं, मंदिर के प्रशासन के संबंध में जितने भी भक्त हैं, तो उन्हें भगवान के विग्रह के सामने जाके, अपने अपने मंदिर में जो विग्रह हैं उनके सामने जाके, कम से कम हफ्ते में एक बार, तो प्रतिदिन न भी हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार जाके भगवान के सामने रिपोर्ट देना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके मंदिर में ऐसे ऐसे सत्कार हुआ है, ये आपका मंदिर है, आपका स्थान है. तो जैसे कितने पैसे आए, दान कितना मिला मंदिर को, और दान जो मिला उसका खर्च कैसे हुआ, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हमने ऐसे प्रसाद का वितरण किया, इतने लोग यहाँ आए थे, आपकी प्रसन्नता के लिए इस प्रकार के उत्सव मनाए गए, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर हुए थे इत्यादि इत्यादि. तो हर एक मंदिर में ऐसे होना चाहिए. तो न केवल बेलगाम मंदिर में, याद रखना जो भी भक्त बैठे हैं मंदिर के लिए, त्रिवेंद्रम, इट्स अ गुड आइडिया, वीकली रिपोर्ट टू द डीटीज इन ऑल टेम्पल्स. जहाँ भी मंदिर हैं भगवान के सामने जाकर बात करनी चाहिए. जैसे हम किसी व्यक्ति के सामने बात करते हैं, वो केवल मन में नहीं, शर्माने की बात नहीं कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम बात कर रहे हैं विग्रह से, नहीं. प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात राजेंद्र नंदन, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है. तो भगवान के सामने खड़े रहकर बात करने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। तो भगवान के सामने आकर हमें उनसे बताना चाहिए, हिसाब किताब मंदिर का रखना चाहिए उनके सामने, उनके चरणों में, कि इतने पैसे आए, इतने पैसे गए और ये सारे कार्यक्रम हुए। तो मैं निवेदन करता हूँ कि राजा कुलशेखर के पदचिन्हों में चल के हमारे यहाँ जितने भी भक्त अलग अलग स्थानों से आए हैं, जो अलग अलग मंदिरों से संबंधित हैं, वो इस प्रथा को प्रारंभ करें। कैसा प्रस्ताव है ये? अच्छा है, तो कृपया आप अपने अपने मंदिरों में इस प्रथा को प्रारंभ कीजिए। बल्कि घर में भी ऐसे कीजिए आप, केवल मंदिरों की बात नहीं है। हाँ, हर एक भक्त के घर में मंदिर है, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, तो आपके मंदिर, घर के मंदिर में भी भगवान के सामने जाके आप आपके परिवार का हिसाब किताब रखिए। तो ऐसे आमदनी इतनी हो गई, खर्चे इतने हुए, आपकी सेवा के लिए क्षमा चाहते हैं, बहुत कम खर्चा हुआ, थोड़ा खर्चा सिनेमा के लिए भी हो गया, आप क्षमा कर दीजिए। तो जो भी है, वैसे भी भगवान को पता है कि आपने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, तो बोल ही दीजिए ना फिर। तो भगवान को बोल दीजिए कि ऐसे ऐसे पैसे हमने खर्च किए हैं। तो न केवल मंदिर में परंतु घर में भी हर एक भक्त को चाहिए कि वो कम से कम एक हफ्ते में एक बार, यदि प्रतिदिन हो सके तो बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी ने देखे ये प्रथा आरंभ की कि मंगल आरती के तुरंत बाद दर्शन बंद होने के पहले ये घोषणा की जाती है भगवान की प्रसन्नता के लिए कि कल मंदिर से इतने पुस्तकों का वितरण हुआ, फिर इतने धनराशि एकत्र हुई, दान वगैरह इतने आए इत्यादि। तो ये और भी आगे हमें बढ़ाना चाहिए। परंतु जब भगवान के सामने जाएंगे आप, पर्दे बंद हो सकते हैं, ऑल्टर में जाके गर्भगृह के अंदर जाके एक कागज़ पे सब रिपोर्ट लेके भगवान को देना चाहिए। तो राजा कुलशेखर ऐसे प्रतिदिन किया करते थे और ये जो प्रथा है आज तक चलती है। Am I correct? The king comes, who comes to give the report? Who comes to give the report? King? तो जगत साक्षी प्रभु बता रहे हैं कि आज भी राजा आके रिपोर्ट देते हैं भगवान अनंत पद्मनाभ स्वामी को। और पहले ऐसे प्रथा थी कि रजी किसी दिन राजा नहीं आ सके तो उनको दंड मिलता था, उनको एक सोने का मोहर जो है वो दंड देना पड़ता था दान। आज भी राजा आते हैं, हालांकि ये राजतंत्र नहीं है, फिर भी वो आते हैं और एक दिन चूक किया तो उनको दान देना पड़ता है, 1 रुपी, 1 रुपये उनको दंड देना पड़ता है कि कल हम नहीं आ पाए। तो ये देखिए सभ्यता, ये संस्कृति कितनी अच्छी है, भगवान के ऊपर केंद्रित हर चीज। देखिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक हम लोग भेद करते हैं, परंतु भक्त के लिए ऐसा भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भौतिक जीवन का परिणाम भी आध्यात्मिक जीवन पर होता है और आध्यात्मिक जीवन का असर हमारे भौतिक जीवन पर भी होता है। क्योंकि भक्त तो केवल भगवान के लिए जीता है, भगवत प्राप्ति के लिए ही वो जीता है। उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि कैसे भगवत प्रेम में प्राप्त करूं, तो इसलिए उसके जीवन की व्यवस्था उसने ऐसे की हुई होती है कि हर चीज ऐसे वो करे जिससे कि उसके भक्ति के ऊपर प्रभाव अनुकूल हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। तो इसलिए यहाँ पे अनेक स्थानों में जो मंदिर के नगर हैं, चाहे आप जयपुर में जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग अपने अपने स्थानों में, दुकानों में, नौकरियों में जाने के पहले गोविंद देव का दर्शन करते हैं, फिर अपने अपने कामों में चले जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप उडुपी में जाइए, जितने प्राचीन स्थान हैं जाइए, तो हमारे मंदिरों में भी ऐसे होना चाहिए, जहाँ संभव हो जाके पहले दर्शन कर लीजिए, फिर अपने अपने काम में निकल जाइए। तो खैर ऐसे चलता रहा। उधर उनके राज्य में चेर राज्य जो है वो बहुत फैला इधर उधर, और यहाँ तक कि पांड्य और चोल राज के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। ये जो पांड्य राज है, चोल राज और चेर, इन तीनों के बीच में कभी कभी युद्ध भी हुआ करते थे। कभी एक राज्य की का विजय होता था, कभी दूसरे। तो महाराज कुलशेखर के समय इन्होंने चेर वंश को फैलाया और चोल और पांड्य वंश के जो इलाके थे उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो समय में उनका विवाह भी हुआ और एक पुत्र उनका हुआ, जिनका नाम भी उन्होंने दृढ़व्रत रखा। अपने पिताजी के पीछे उस बच्चे का नाम भी दृढ़व्रत रखा, और उनकी एक पुत्री भी हुई। और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आगे चल के इसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे, कि जब महाराज कुलशेखर ने वानप्रस्थ लिया तो वो अपने पुत्री को साथ में ले गए। पुत्री बहुत बड़ी भक्त थी भगवान श्री रंगनाथ की, और वो चले गए श्री रंगम और उनकी पुत्री का विवाह कर दिया। किन से करा दिया? भगवान रंगनाथ से करा दिया। और उनकी पुत्री वहीं पर रही जीवन भर, भगवान रंगनाथ की पत्नी के रूप में रही, भगवान रंगनाथ की सेवा करती रही। तो खैर महाराज कुलशेखर के दो पुत्र हुए। और ऐसे बताया जाता है कि तमिलकम या केरल वंश के इतिहास में महाराज कुलशेखर का राजगद्दी पर बैठना एक आमूल परिवर्तन काल है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटरशेड मोमेंट, अर्थात जो इतिहास को बदलने वाला समय, क्योंकि महाराज कुलशेखर के बाद यहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया और बहुत तीव्रता से यहाँ स्थापित हुआ। यद्यपि वैष्णव धर्म पहले से प्रचलित यहाँ पर था, परंतु बीच में अनेक सदियों के लिए बौद्ध धर्म यहाँ फैल गया। तो बौद्ध धर्म फैलने के कारण वैष्णव धर्म दब गया और सनातन धर्म भी दब गया थोड़ा, परंतु महाराज कुलशेखर के आने के बाद यहाँ पर वैष्णव धर्म खुलेआम फैल गया। देखिए आप यदि इतिहास को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जहाँ पर भी किसी भी धर्म का, किसी भी कोई भी धर्म फैला हुआ हो तो उसके पीछे राजकीय आश्रय अवश्य हुआ होगा। तो जैसे राजा परीक्षित आदि थे, युधिष्ठिर महाराज, धर्म को फैलाने का काम उनका हुआ करता था, तो इसलिए वो राज ऋषि थे। तो उसी प्रकार से कुलशेखर राजा ने ये अपनी राजधानी बना ली तिरुवनंतपुरम, और यहाँ पे फिर उन्होंने उनके वंश, उनके राज्य में वैष्णव धर्म को स्थापित किया। सारी प्रजा यहाँ इसी धर्म को का पालन करती थी। इस समय के बाद यहाँ सारे लोग अधिकतर वैष्णव बन गए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है महाराज कुलशेखर का होना यहाँ। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे भक्त समाज में ब्राह्मण वृत्ति के लोग तो भक्त तो हों ही, साथ साथ क्षत्रिय वृत्ति के भक्त भी चाहिए, जो आगे चल के ये वैष्णव धर्म की रक्षा करें, वैष्णव धर्म को फैलाएं। तो महाराज कुलशेखर राजा भी थे, ऋषि भी थे। तो इस तरह के राजा चाहिए, ऐसे नहीं जो कि रक्षक भक्षक बन जाएं, ऐसे नहीं। तो महाराज कुलशेखर के जीवन चरित्र जो है बड़ा रोचक है। वो अपने राज कारोबार में पूरी तरह से मग्न रहते थे। एक बार एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी उनके जीवन में। जब वो रात को सोए हुए थे तो उनके सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने दर्शन दिया महाराज कुलशेखर को। तो महाराज कुलशेखर इतने प्रभावित हुए उस दर्शन से, स्वाभाविक है होंगे ही, भगवान का दर्शन करके, कि वो सुबह को जाग नहीं पाए, वो ध्यान में ही रहे। और काफी समय तक जब उनके कमरे का दरवाजा खुला नहीं तो उनके जो सेवक थे, मंत्री आदि थे, वो चिंतित हो गए कि अरे राजा को क्या हुआ, कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गए, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। तो अंततः चिंता के कारण उन्होंने राजा के कमरे के दरवाजे जो है वो खोल दिए, अंदर गए। जब अंदर गए तो देखा कि राजा ध्यान में बैठे हैं और उनके चेहरे को देखकर मंत्रियों को और सेवकों को पता चला कि कोई बहुत ही अद्भुत घटना हुई है। महाराज कुलशेखर के मुखारविंद के ऊपर एक प्रकार का विशेष तेज था, ऐसे चमक था, ऐसी रोशनी आ रही थी कि मंत्रियों को पता चल गया कि कोई बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक अनुभव हुआ होगा राजा को। तो उस समय के बाद महाराज कुलशेखर के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा परिवर्तन आया कि उसके बाद उनका जीवन कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गया। पहले भी वो भक्त थे परंतु अपने राज्य को संभालने में बहुत व्यस्त रहा करते थे, लेकिन इस घटना के बाद अब वो अधिक से अधिक अपने आप को भगवान की भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। और जैसे जैसे समय बीत गया तो महाराज कुलशेखर को संसार में रुचि कम होने लगी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और तीव्र होती रही। और जो एक उत्कंठा है, एक लालसा है, एक तड़प है भगवान को पाने के लिए, वो उनके जीवन में, उनके हृदय में बढ़ती गई। प्रतिदिन उनके हृदय में ये लालसा बढ़ने लगी। और फिर उनके मन में साक्षात्कार हुआ कि सारा राज कारोबार, राजा, राजपद, ये ऐश्वर्य, ये राज्य, इसका कोई मायने नहीं रखता, ये सब व्यर्थ है। तो बिल्कुल रुचि नहीं रही उनकी। और अधिक से अधिक समय वो भगवान की भक्ति में ही बिताने लगे। उन्होंने वैष्णवों को निमंत्रण दिया और उनके सानिध्य में उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों को सीखना शुरू कर दिया। श्रवण आदि करते थे, चर्चाएं करते थे, पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण इत्यादि। तो इस तरह से वो बहुत ही एक शुद्ध भक्त बन गए, निष्ठावान भक्त बन गए, श्रद्धालु भक्त बन गए। और फिर उन्होंने अपने राज्य में सब जगह ये कृष्ण भक्ति को फैलाना प्रारंभ कर दिया। तो यह अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर सारे राज्य का केंद्र बिंदु बन गए। और जैसे जैसे उनके अंदर कृष्ण भक्ति की इच्छा तीव्र होती गई, वैसे वैसे वो बीच बीच में प्रतिदिन शोकग्रस्त वचन बोला करते थे कि कब वो दिन आएगा जब मैं ये सब छोड़कर मैं श्री रंगम में जा पाऊंगा और वहां पे रंगनाथ स्वामी की सेवा करूंगा। फिर कभी कहते कि कब वो दिन आएगा जब मैं ये सब छोड़कर, संसार को छोड़कर, तिरुमला में जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर की सेवा कर पाऊंगा। तो कभी कहते कि कब वो दिन आएगा जब ये राज को छोड़कर मैं कांचीपुरम में जाके वरदराज स्वामी की सेवा करता रहूँगा। और जितने भी दिव्य देशम थे उनके बारे में वो स्मरण करते थे, बस उनके मन में यही इच्छा थी कि कब वो दिन आएगा। तो ये जो एक समुत्कंठा है, रूप गोस्वामी इसको समुत्कंठा कहते हैं, भाव भक्ति का लक्षण है। जब किसी भक्त के अंदर इतनी तीव्र इच्छा होती है भगवान की किसी विशेष सेवा को पाने के लिए या करने के लिए, तो ये आतुरता, ये एक लालसा एक शुद्ध भक्त का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो ऐसे ही उत्कंठा महाराज कुलशेखर में दिखाई पड़ रही थी। और जब वैष्णवगण सुनने लगे कि ये राजा वैष्णव बने हैं, बहुत इतने निष्ठावान श्रद्धावान वैष्णव हैं, तो सारे भक्त वहाँ पर आने लगे। और जैसे वो वहाँ पर आते तो महाराज कुलशेखर उनको निमंत्रण देते और उनसे फिर बहुत कुछ सुनते। और इसी अवस्था में, ऐसी चेतना की अवस्था में, जब वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न थे, उन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र की रचना की। और उन्होंने, ऐसे बताया जाता है कि उनके जो दिव्य साक्षात्कार थे उनको व्यक्त किया, और हर एक श्लोक एक फूल के समान था। और जितने भी श्लोकों की रचना की उन्होंने, 53 इनको एक माला के रूप में रख के भगवान मुकुंद श्री कृष्ण या पद्मनाभ को उन्होंने समर्पित कर दिया। तो वैसे आगे चल के कई लीलाएं हुई, तो जिन लीलाओं उन लीलाओं का वर्णन आज शाम को हम यहाँ पर करेंगे महाराज कुलशेखर के बारे में, और उनके मुकुंद माला स्तोत्र के कई श्लोकों का उच्चार या पठन भी हम करेंगे। तो अब हम श्रील प्रभुपाद जी की गुरु पूजा करेंगे, आरती है। महाराज कुलशेखर की जय, श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय, श्री तिरुवनंतपुरम धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो कोई सूचनाएं हैं?